क्षेत्रीय आगमन, आज गुरु पूर्णिमा है, आपके समक्ष योगेश्वर कृष्ण वैज्ञानिक अभिगम, पूरा उपस्थित समाज पठित है, आज पूरा विश्व विज्ञान के आधार पर केवल कृष्ण की बात नहीं, हमारे हर मंत्र पर, हमारी ऋचाओं पर, यज्ञ पर, गायत्री मंत्र पर, कीर्तन पूजा पाठ अर्चन स्मरण पर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पर, सब पर वैज्ञानिक प्रभाव को देख रहे हैं, कहीं कोई खंडन की बात नहीं है, मंथन है समझना। साहब ने विषय के आधार पर जो कुछ आपके सामने कहा उसका पूरा आधार लेते हुए विज्ञान, मनोविज्ञान और आज का समाज, हम अपने जीवन को कैसे उठाएं, मूल बात यही है। हम बड़े बड़े संतों की बात करें, अवतारों की बात करें, लेकिन उनके नाम के साथ कभी स्वर्गीय नहीं लगता, इसलिए आज पूरा विश्व मान रहा है। अगर हम राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो इस दुनिया से चले जाने के बाद या तो स्वर्गीय लगेगा या कुर्सी छोड़ने के बाद भूतपूर्व या पूर्व लगेगा, लेकिन हमारे अवतारों के साथ न भूतपूर्व है न पूर्व है, बल्कि है। कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, संत कहते हैं, कबीर कहते हैं, सूरदास कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, माधवाचार्य जी कहते हैं, निम्बार्काचार्य कहते हैं, स्वामी साजानंद कहते हैं, बाइबल कहती है, कुरान कहती है। तो आज पूरा भी समझ गया, आप जिसे मानते हैं उसके प्रति आप टोटल रहे, पूर्ण समर्पित कर। कृष्ण केवल कृष्ण की बात नहीं है, कृष्ण एक माध्यम है, उससे पूरी बात है, आप जिसे माने माने। आज के प्रसंग से मैं कृष्ण का नाम लूंगा, लेकिन कृष्ण में क्राइस्ट भी आएंगे, पैगंबर भी आएंगे, कबीर भी आएंगे, आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, मनीषानंद भी आएंगे, शंकराचार्य जी भी आएंगे, निम्बार्का सभी आएंगे। केवल कृष्ण के माध्यम से हमें आपको समझना है। क्राइस्ट ने समझा, पैगंबर ने समझा, तुलसीदास समझे, सूरदास समझे, लेकिन हम अभी अपने को नहीं समझ पाए। आपका धर्म ठीक है, आपकी संप्रदाय ठीक है, आपकी संस्कृति महान है, आप स्वयं महान। मैं बड़े धीरे से आपके सामने उठाऊंगा, लेकिन फिर से कह दूं, हमारा कृष्ण सबका है, केवल हिंदुओं का नहीं है। कृष्ण का विचार अगर आप देखें तो मानवता की सुगंध है, और जैसा साहब ने कहा उसी आधार में कहता हूं, सुगंध की जाति पाति, धर्म काल में आप बांध नहीं सकते। ये बगीचा आपका है, लेकिन सुगंध सबकी है। एक गौरव की बात है कि वेद हमारे पास है, कृष्ण हमारे पास है, राम हमारे पास है, आप हमारे पास है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन आपकी सुगंध है, आप डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे वकील हैं, आप अच्छे प्रशासक, अच्छे संत हैं, तो आपके सद्गुरुओं की सुगंध पूरे विश्व के लिए, उसे जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि कोई छत्री या कोई ब्राह्मण, कोई पटेल डॉक्टर है, कोई थोड़े लेता है केवल पटेलों का इलाज करूंगा, केवल ब्राह्मण का इलाज करूंगा, केवल छत्रियों का इलाज करूंगा। अक्सर लोग मेरा भूत हुआ जब पूछते हैं, मैंने कहा कि आप तो मनीषानंद संत के रूप में स्वीकार करते हो, तो सब चक्कर में क्या पड़ते, ये सब चक्कर में पड़ने क्या, मनीषानंद की मिठाई की सुगंध आपको पसंद है कि मिठाई कहां से बनी वही देखते हो। ठीक है, जहां प्रसंग है, लेकिन मूल बात मैं आपसे कहूंगा, इसलिए अक्सर मैं कभी नहीं पूछता, चाहे प्राइवेट आप मेरे पास आए या पब्लिक आए, कभी नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है, आपका व्यापार क्या है। आपका आपसे पूछता हूं, आप अपने जीवन को उठाने में जो प्रयास कर रहे हो, क्या उसमें मनीषानंद हमारा वेद हमारा कृष्ण हमारा राम अगर मदद कर सकता है तो मैं आपके साथ हूं। बस तो आज का भी अक्सर जो मेरा प्रवचन होता है उसमें यही है, मनुष्य को उठने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और आज का जो विषय रखा गया वही है, पूरे विश्व के लिए है, लेकिन यहां जो उपस्थित है नर और नारी के रूप में बहुत पठित समाज है, 80% तो उपस्थित जो है कोई डॉक्टर्स प्रोफेसर्स इंजीनियर्स है, बाकी जो 20% वो भी पढ़े लिखे भले किसान है लेकिन पढ़े लिखे समझदार है सुखी है। आप सुखी हैं तो सुखी आदमी को प्रवचन सुनाऊंगा, दुखी आदमी सोचेगा बाबा कब प्रवचन करें, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। तो अब क्या विचार कीजिए, अगर मैं गीता की बात करूं, गीता प्रथम किसको सुनाएगा? एक जिम्मेदार आदमी को, गरीब को नहीं, दुखी को नहीं, कोई गरीब नहीं। ये पैसे कौड़ी कपड़े से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। यहां जितने बैठे सब जिम्मेदार है, आप किसी के भाई हो, किसी के पिता हो, किसी की माँ हो, किसी के गुरु हो, किसी के अधीन हो, यहां हर आदमी जिम्मेदारी लेके बैठा। नहीं तो ये तो जिम्मेदारी है कि आप भारत के नागरिक हो, भारत का नागरिक होना क्या है, मामूली जिम्मेदारी है। यहां जितने जिंदा है ये सब जिम्मेदार है, इसलिए बात सब है। भले आपकी पगार 1 लाख हो या रोज की जो है 100 रुपया हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी गाड़ी आज गाड़ियां यहां आई, कोई 25 लाख की है, कोई 50 लाख की, कोई 10 लाख की, कोई 5 लाख की, कोई 2 लाख की, कोई बाइसाइकिल से आए, कोई दातून से आया, लेकिन एक रेल में भी अगर हवा नहीं हो, पंचर हो जाए तो परेशानी हो, राजदूत वाला भी 50 लाख वाला। तो आपके सामने जो कर रहा हूं मुझे मतलब नहीं, आप कोठी में हैं लेकिन सुखी हैं, मुझसे पूछिए, जिनके पास कोठी वो भी दुखी है, जिनके पास नहीं वो भी दुखी है, जिनके पास संतान है वो भी दुखी है, जिनके नहीं वो दुखी। तो यहां हम दुख में से रास्ता हम कैसे निकालें वही हमें समझना है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी की बात करना चाहता हूं, हमारा किसने जिम्मेदार को गीता सुना रहा। स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके पास आया, स्वामी जी से कहता है मुझे गीता पर कुछ विचार दीजिए। कहा युवक तेरी पढ़ाई कितनी है? पुरानी बात है। कहा 10 तक पढ़ा मैट्रिक है। बेटा इस समय करता क्या? कहा कुछ करने का मन ही नहीं होता, सोचता है कि कहीं मंदिर सामने बैठ के भीख मांगा। कहते बेटा जिस गीता की तू बात कर रहा है वो भिखारियों को नहीं सुनाई गई, तू पहले अधिकारी बन, भले तू पट्टा वाला बन, कंपाउंडर बन, डॉक्टर बन, लेकिन भले तू मैट्रिक है लेकिन कोई जिम्मेदारी लेकर आ, फिर मैं तुझे गीता पर विचार व्यक्त करूंगा। तू तो मंदिर सामने बैठने की बात कर रहा है, भिक्षा मांगने की बात कर रहा है, भिक्षा मांगने के लिए गीता सुनाने क्या जरूरत है? तो यही बात है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं हमारा देश, अगर आज विश्व देखिए, कई बार अब्दुल कलाम पूरे विश्व में पुकार पुकार कर बोला, चाहे साथ इंडिया पढ़ते रहे प्रवचन सुनते रहे, एक में हजारों बार था, भारत में न प्रतिभा की कमी है, भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर कमी किस बात की है? वो बार बार बोलता है भारत में किसी चीज की कमी नहीं है। एक राष्ट्रपति, एक वैज्ञानिक, अपने अनुभव से कह रहा है। मैं भी आपसे कह रहा हूं आप में कोई कमी नहीं है, तो फिर आप कहेंगे मनीषा जी, पंडित जी, गुरु जी, जो भी आप मुझे मानते हैं, आप कहते मेरे में कमी नहीं है, तो फिर क्या बात है? आप अपने को समझ नहीं पाए, आप भारत को नहीं समझ पाए, संस्कृति को नहीं समझ पाए, अपने परिवार को नहीं समझ पाए, अपने धर्म को नहीं समझ पाए, और इसी अज्ञान के कारण भारत आज बहुत दुखी है, गरीबी कारण दुखी है। आज वैज्ञानिक कहते हैं भारत गरीबी के कारण दुखी नहीं है जितना अज्ञान के कारण दुखी है। हर भारत वाला शाम को कुछ कुछ खा के सोता है भिखारी, और फिर बाल वाले कहते हैं निकम्मे से निकम्मे लोगों को भी भारत की संस्कृति में रोटी और सोने की जगह मिल जाती है। भारत उतना महान है कि निकम्मे से निकम्मे को भी भारत की संस्कृति में संस्कार है कि दो रोटी सुबह शाम दे देते हैं, सोने की है जगह भी दे देते। लेकिन जो आपसे कहना चाहता कि बड़े बड़े लोग कहते हैं भारत में किसी चीज की कमी नहीं, आप सोचिए आगे उनकी क्या कमी है। वही मैं आपको जो लोग बड़ी शक्ति लेकर उनके बैठे हैं वो एक इशारा करते हैं, एक विचार देते हैं, उस विचार का स्वरूप रामायण में भी है, महाभारत में भी है, बाइबल में है। हाथ उठ गया मुस्लिम परिवार में बड़े बड़े हमारे आदरणीय उर्दू के विद्वान मौलवी आए थे, वहां एक ही मैं विचार उठाया, थोड़ी बहुत कुरान जानता हूं, और उठाया प्रवचन में कि शैतान की कोई जाति पाति नहीं होती, जिसे आप लोग शैतान कहते हैं उसे हम दुष्ट कहते हैं, बदमाश, ये हर काल में रहे, हमेशा रहे और रहेंगे, इनकी कोई जाति पाति नहीं। हमारे दो आदरणीय मौलवी आए थे, कोई पटना से, कोई लंदन से, मुस्लिम भाई तो पूछे कि कुरान में शैतान किसे कहा गया, कई जाति पाति की बात होती है, आप कुरान पढ़िए तो मैं कहता आप फरिश्ते बन जाइए, अगर मानिए आप देवता बन जाइए। लेकिन आज के संदर्भ में मैं वही बाइबल मानो, कुरान मानो, धम्मपद मानो, रामायण मानो, गीता मानो, लेकिन मानो साहब ने कहा जो मानते अक्सर मैं ही कहता, जो मानते हो उसे मानो, हटाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत। तो आज कृष्ण के माध्यम से पूरे विश्व को एक विचार देना चाहता, और कृष्ण का विचार सबका है, उसमें जाति पाति कोई सवाल नहीं कि कृष्ण का नाम हिंदू इसलिए हिंदुओं के लिए नहीं, विचार सबका होता है, पैगंबर सबका है, जिसे क्राइस्ट सबके हैं, महावीर सबके हैं, ये तो हम हैं कि संचित भावना करके हम इनको छोटा कर, हमने इनको छोटा बनाया, हम जो फॉलोअर्स है, हम जो अनुयायी, किस महापुरुष ने बताइए शैतान के पक्ष में बात की, झूठ के पक्ष में बात की, घृणा के पक्ष में बात की है, फिर भी पता नहीं शैतान ने किस आकर हमारे आपको परेशान कर दिया। अब वही धीरे धीरे बताता हूं। अच्छा लोग क्या कहते हैं, बिना समझे बोल देते हैं कि समय तक के दुर्कर आ गया, लेकिन आज पूरा विचार कर रहा है, एक विचार जो मनोविज्ञान पर है वो आपको बताना चाहता हूं। थोड़ी सी बात इसके पहले कल स्वामी जी, मैं रोज मंदिर जाता और फिर मुझसे कुछ तर्क करते हैं, तो मैंने कहा आप किस मंदिर में जाते हो, कोई कहता हनुमान जी के मंदिर में, कोई कहता है राम के मंदिर में, कोई कृष्ण के मंदिर में, कोई शिव के मंदिर में, कोई गुरु मंदिर में। मेरे प्रिय आत्मन बड़ी नम्रता से पूछता हूं, हनुमान जी ने कहा था कि काम काज छोड़ कर रहा और इशारा हनुमान का पाठ कर मैं तेरा काम मफत में कर दूंगा, मैं कहता हूं किस अवतार ने कहा कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारा काम करूं, मैं किसकी बात बाद में लूंगा वो समझाऊंगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, आप एकदम सगम व्रत की बात सुनाऊंगा, लेकिन आप पहले कुछ बताना चाहता हूं। स्वामी जी, रोजाना हनुमान मंदिर में जाता हूँ, 11 पाठ करता हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। मैंने कहा, हनुमान जी ने तेरे घर आके कहा था तू आ मेरे मंदिर में, 11 पाठ कर, मैं तेरा काम करूंगा? नहीं, मुझे किसी ने कहा था। मैंने कहा, जिसने कहा उसे पकड़, मैं हनुमान जी की क्यों बात करता? आपके बच्चे मेरे पास आते बड़े प्यार से, करता मुझे जल्दी नमस्कार नहीं करते, लेकिन आप क्या करते? अरे गुरु जी हैं, इनको नमस्कार करेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। ये लालच है, लेकिन अच्छी लालच है। और फिर नमस्कार करता है, और प्रसाद नहीं दू तो दूसरी बार नमस्कार भी नहीं करता। 3 बार नमस्कार किया है तो कुछ देता ही नहीं। ये बच्चों की बात, स्वाभाविक बात, निर्दोष बात। तो मैंने कब कहा बच्चों को मेरे पास लाइए? नहीं, हमारी संस्कृति है, यहां क्यों आते हो वो मैं बात में बताता हूं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सबको लेना, केवल एक बात नहीं करता, इसलिए बीच में बोलता जाऊंगा। नहीं तो स्वामी जी ने तो बस हिंदुओं के लिए कहा, बाकी किसी के लिए नहीं। लोग कहते हैं किसने युद्ध करा दिया? अब आपको विचार करता, कृष्ण भगवान अर्जुन, अर्जुन मित्र है, सब कुछ है। कृष्ण भगवान गए थे अर्जुन के पास, समस्या जब आई, अर्जुन किसके पास आया? दुर्योधन भी आया। जितना जरूरत है इशारा करते हुए मनोविज्ञान विज्ञान संदर्भ के बाद बताता जाऊंगा, आप 25 बार 50 बार सुन चुके। दुर्योधन पहले आया, लेकिन सिर की तरफ बैठा, अर्जुन बाद में आए, नम्रता से पांव की तरफ बैठे। पहले लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हमारे अवतारों में हमारे राम भी जब मांगने गए तो छोटे अगर किसी से कुछ लेना है तो अहंकार में मत जाओ। दुर्योधन में अहंकार गया, मजबूर था, लेकिन सिर की तरफ बैठा। अर्जुन में नम्रता है, यहां पांव सिर की बात नहीं, नम्रता और अहंकार की बात करता। मैं थोड़ा वैज्ञानिक रूप दूंगा, लेकिन आप समझे। अर्जुन पांव की पक्की तरफ बैठा, भगवान उठे, अब सब लीला करेंगे। अर्जुन किस हेतु से आया? तो दुर्योधन कहता है, पहले मैं आया हूं, भगवान ने यूं देखा। अब मनोविज्ञान क्या कहता है? माता पिता वडील संत जब सीधी दृष्टि करेंगे तभी एनर्जी जागृत होगी, हमारी दृष्टि टेढ़ी हो गई तो आपको क्या मिलेगा? मनोविज्ञान है, किसने टेढ़ा देखा, इसलिए कहा माता पिता गुरु वडील के सामने। फिर भगवान ने नाटक किया, लीला की, जिसे मैं देखा वो पहले दुर्योधन समझ गया है पक्षपात करता। भगवान बात करते हैं कृष्ण, कहते अर्जुन तू मां। दुर्योधन घबरा गया, पढ़िए महाभारत, ये तो पक्षपात वाली बात करके इशारा कर रहा है। अर्जुन का प्रभु आप मेरे साथ। दुर्योधन खुश हो गया, इस 3.5 फुट वाला जाके क्या कर, मेरे पास इतनी सेना ले। लेकिन अभी यहां समझिए, साकार रूप में भले माता पिता गुरु आपको 3.5 फुट के नजर आते हो, लेकिन इनमें ऊर्जा जबरदस्त है। लेकिन जो लोग शक्तियां प्राप्त किए और अहंकारी हैं, उनकी शक्तियां अहंकार के माध्यम से नष्ट हो जाती है। अब देखिए, जो लोग कहते हैं किसने युद्ध करा दिया, भगवान ने नहीं कहा एक तरफ मैं रहूंगा एक तरफ 18-24 सेना है। अर्जुन ने भगवान को मांगा, भगवान ने नहीं कहा कि मुझे मांगा। दुर्योधन खुश हो गया, दुर्योधन धन प्राप्त करके जो हंसे वो दुर्योधन, किसको प्राप्त करके जो आनंद में आए वो अर्जुन, हम सब अर्जुन बने दुर्योधन बने, आए दोनों रहे। लेकिन आपकी बात कर रहा, फिर आपको क्रम बताता हूं, चल मैं तेरे साथ हूं, मैं क्या करूंगा तेरे साथ रहकर। कहते आप मेरे रथ के सारथी बनिए, स्वीकार। भगवान ने कहा कि नहीं बनूंगा, सारथी बने। कहते रथ किधर ले चलूं, या सोचिए, मैं विज्ञान से आपको बताऊंगा, बड़ी सुंदर बात है मेरे प्रिय आत्मन, मैं किधर चलूं। दोनों सेनाओं के बीच में, अब यही आपको समझाना चाहूंगा। अक्सर अगर आप वेद उठा के देखें, ऐं महात्मा ब्रह्म प्रज्ञानां ब्रह्म अहम् ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हम लोग अपने वेद को नहीं समझ पाए, अपने अवतारों को नहीं समझ पाए। राम ने कर्म किया कि नहीं, योगेश्वर किसने किया कि नहीं, जा विचार कर। ईश्वर एक अस्तित्व, और आज विज्ञान भी कहता है अस्तित्व का कोई संकल्प नहीं होता, लेकिन आपके संकल्प में अस्तित्व मदद करता है। आकाश एक अस्तित्व है, वायु एक अस्तित्व है, अग्नि एक अस्तित्व है, जल एक अस्तित्व है, धरती एक अस्तित्व है, जिसे हम पंच महाभूत कहते हैं, इसी को विज्ञान एनर्जी मानते हैं। हम भी कहते हैं पंच महाभूत है, केवल उसका कर्मों से जैसा चाहे रूपांतर कर ले। पंच महाभूत का सघन होना है पिंड है, इसका विस्तारित ब्रह्मांड है, यही तो विज्ञान भी कह रहा। एनर्जी का सघन होना एक व्यवस्था है, और एनर्जी का विस्तार एक व्यवस्था है विराट की। हमारी बात एनर्जी के ढंग से कर रहे, हमारे आप में कितनी एनर्जी है देख लीजिए। हाथ उठाना चाह तो पूरी एनर्जी दोनों हाथ में आ गई, विचारों से। मैं एक हाथ से उठाना चाह तो देखे इस हाथ में है ताकत, नहीं प्रकट नहीं हुई, इसमें कितनी ताकत है। जहां विचार करो, हमने एनर्जी विचारों से कैसी पैदा की, दबाना चाहूं तो उसमें भी एनर्जी पैदा होगी तो डिस्ट्रक्टिव बने। आपका पद छूंगा वो भी एक विचार है, और किसी को लकड़ी मारूंगा वो भी एक विचार है, हाथ तो वही है। अब यही आपके पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी का सघन होना जीव है, और उसी का विस्तार ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, ईश्वर है, परमेश्वर है। और लेकिन जो आपको बताना चाहता था, पानी अस्तित्व है लेकिन उसका कोई संकल्प नहीं है, अग्नि एक अस्तित्व उसका कोई संकल्प नहीं है, जल एक अस्तित्व उसका कोई संकल्प नहीं है। जा विचार कीजिए कैसे, अग्नि है, अग्नि पोषक भी है और दाहक भी। अगर आप समझ करके अग्नि का उपयोग करेंगे तो भोजन पकेगा, आप गलत उपयोग करेंगे तो मकान भी जल जाएगा। आपके पास मैच बॉक्स है, आपके पास पेटी है, पेटी से आप मंदिर में आरती का दीपक भी जला सकते हैं, और मक्के भी जला सकते हैं। जो ये महती है वो आपके संकल्प से दाहक या पोषक बन सकती है, इसको विज्ञान कहता है डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव। आप इसी हाथ को प्रणाम करें, एनर्जी का उपयोग हुआ, और किसी का गला दबाएं, एनर्जी का दुरुपयोग हुआ। अब यही ईश्वर जो चाहेगा करेगा, नहीं आप भेद उठा के देखिए और तार बाद उठा के देखिए, पूरी रामायण में, पूरे महाभारत में, पैगंबर की, महावीर की, भगवान बुद्ध की, ये सब के किसी की बात कर, सब ने कर्म का समर्थन किया। अर्थात अर्जुन भगवान के पास गया, आपको प्यास लगती है नदी के पास, आपको जरूरत है खेती करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आपको जरूरत है तो ऋषियों ने बताया कि शांति एनर्जी प्राप्त करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक केंद्र है, जिसे हमने मंदिर कहा, किसी ने मस्जिद कहा, किसी ने गुरुद्वारा कहा, किसी ने बिहार कहा, अब उनमें रहने वालों को किसी ने बुद्ध कहा, किसी ने महावीर कहा, किसी ने पैगंबर कहा, और हमारे तो अभिनय को वहां कोई खंडन की बात नहीं है। तो आप कैसे कहते हो, आपका मन जो संकल्प करेगा अस्तित्व उसमें मदद करेगा। इसलिए आप क्या चाहते हैं, अर्जुन तेरे मन में यहां तक क्या था, जो शंकाएं होती है कि किसने युद्ध युद्ध नहीं, वो छात्र धर्म की बात है, आपके धर्म की बात है, कितने लोग मेरे पास आते हैं, कोई परेशानी होती है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई राजनीति में है, कोई व्यापारी है समष्टि में, नहीं नहीं जैसे साधन का प्लान हुआ, जो जिम्मेदार आदमी है परेशानियां देख करके वो प्लान। अब इसका थोड़ा वैज्ञानिक स्वरूप होगा, विज्ञान कहता है अर्जुन के आधार पर वह किसको अपने पक्ष में किया, सारथी बनाया, दोनों सेनाओं में बीच में ले चलने की बात की। अब देखने के बाद बुद्धि विचार, एक संघर्ष जिसे बौद्धिक संघर्ष कहा गया मनोविज्ञान, आप भी मेरे पास आते हैं, बौद्धिक संघर्ष पैदा होता है। कई बार लोग मेरे पास आए, महाराज जी एक नौकरी ये है, एक नौकरी ये है, ये भी है, किसको करता, आप जो कंफ्यूजन आता वो है विषाद, आप नहीं समझ पा रहे कि मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, आईएएस करूं कि आईपीएस करूं, क्या कर, यू कम टू मी टू मेक इंक्वायरी, व्हाट आई टेल व्हाट आई गाइड यू फॉलो एंड यू अचीव द सक्सेस। लेकिन वो पढ़ाई करने के बाद आप जो निर्णय नहीं कर पाते, मैं बताऊंगा ध्यान, आप लोग आते बच्चे, बच्चा बना जी डॉक्टर बने इंजीनियर, बच्चे से पूछता मैं मनोवैज्ञानिक, मैं ज्योतिष का भी आदर करता, सबका करता, लेकिन पहले आपके विचार को जानता, ये पूरी जबरदस्त बात है। अब देखिए ये समझने की बात, अर्जुन में बौद्धिक संघर्ष हुआ, देखने के बाद एक छोटी सी बात बताऊं, हाथ जोड़कर जब आप एक फ्लैट देखते हो तो पसंद आता है, नहीं तो दस दिखा दे कहते महाराज जी कौन सा, और हाथ जोड़ के कहूं कोई एक अच्छी लड़की दिखाए तो कहते ठीक है दस दिखा दे, कोई उनसे पूछते जो कर्मचारी आदमी महाराज कहा जाते, छोटी छोटी बातों में देखता हूं। अभी थोड़े दिन पहले कोई आकर मेरे से पूछा महाराज जी बड़ा लड़का मेरी सेवा करेगा कि छोटा, मैंने कहा दोनों नहीं करेगा, कोई नहीं, मैंने सुना है कि आप अंतर्यामी है। मैंने कहा अंतर्यामी का सत्यानाश कर, मैं ऐसा अंतर्यामी नहीं कि दो भाइयों को लड़ा दो। आप पिता के तौर पर ठीक है, आप कोई पक्षपात करते कहते थोड़ा बहुत हो जाता तो थोड़ा बहुत उनका भी हो जाता। आज सोचिए मेरे से पूछा जा रहा, लड़के के जन्म आपको दिया और आज एक हो गया 30 साल का, एक हो गया 24 साल का, दोनों कमा रहे। अब पूछ रहे बड़ा सेवा करेगा छोटा, मेरे से पूछा जा। अब यही छोटी छोटी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये होता है, ऐसा इट हैपेंस, इट इज नेचुरल, इट कम्स इन द ह्यूमन लाइफ। मैं ऐसा इनका आई डोंट इग्नोर, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वही आपको बता रहा हूं कि विचार एक बौद्धिक संघर्ष, बड़ा लड़का छोटा। अभी जिनके एक लड़का है बताओ, बता दिए एक और आ जाए तो ठीक है, कभी नालायक निकल गया तो तुम पहले से नालायक मांगते। हाँ हाँ मेरे पास है बड़ा लड़का, 4 साल हो गया अभी तक दूसरा नहीं आएगा। ये दोनों मिलके मैंने कहा एक तो भी एक ही हाथ खींचेगा, दोनों दो तरफ नशा कसी करेंगे, किधर जाएगा। नहीं नहीं मैं आज अंतर्यामी है, मैंने कहा दूसरे कोई जरूरत है इसको लाइक नहीं। एक बात ना, छोटी छोटी बात, लेकिन ये अक्सर आपकी बात है, मैं इसको नहीं करता लेकिन बता रहा। अब ये बौद्धिक एक संघर्ष, ये अर्जुन का बौद्धिक संघर्ष कहां तक उतरा, नौकरी तक की बात बताओ। मैं गुजरात में करूंगे, पंजाब में करूंगे, हरियाणा में करूंगे, महाराष्ट्र में करूंगे। मैंने कहा भाई मैंने सुना है कि एक आदमी से पूछा गया कि तू नरक में जाएगा स्वर्ग में, वो कहता जहां फायदा वहां भेज दो, मैं नरक स्वर्ग में जा। मैं क्या कहूं। अब एक बात इशारा मेरा समझिए, स्वामी जी पोस्टिंग ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आमदनी ज्यादा हो, मेरे से पूछा। अब बताता अपने परिवार में अपने देश में बोल रहा, लेकिन ये जो बौद्धिक संघर्ष है केवल अर्जुन का नहीं पूरा मनोविज्ञान का था, हमारे हाथ में। तो अर्जुन का बौद्धिक संघर्ष, मैं युद्ध करके क्या करूंगा, ये सब मर गए तो जीत के क्या करूंगा, और मैं ही मर गया तो क्या होगा, अभी हमारे आपके नहीं होगी। आप देखिए मनोविज्ञान बौद्धिक संघर्ष में हमारे आपको होता है किस नाम है विचार। जो आप अच्छा विचार दे वो माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, गुरु भी कोई केवल की बात नहीं है, वो राम भी हो सकते हैं, बुद्ध भी हो सकते हैं, महावीर भी हो सकते हैं, गुरु नानक भी हो सकते हैं, वो बुद्ध भी हो, कोई भी हो सकता है, पैगंबर भी हो सकता है। जब आप अंदर बौद्धिक संघर्ष पैदा हो उस समय विचार का नाम किसका है। अब क्या बस ये उसका बौद्धिक संघर्ष हुआ, अब फिर मनोविज्ञान कर लीजिए फिर आगे चलो। बौद्धिक संघर्ष में जब निराशा आ जाती है तो शरीर में कंपन पैदा होता है, जो जो हालत मैं क्या करता, पलायनवाद आ जाता। शायद में जो पलायनवाद की बात थी उसी को मैं मनोविज्ञान से आपको कहा। एक बौद्धिक संघर्ष पैदा हुआ उसमें नकारात्मक बात आ, निराशा की बात आई, हताशा की बात आई, निष्फलता की बात आई, तो हमारे शरीर में भी कंपन पैदा हो जाता है। जो अर्जुन को देखते हैं भले वो एक लीला है कि नाटक है, साथ में कहा ना अक्सर मैं कहता है सब छोड़िए हमें सीखना क्या उसकी बात कीजिए। यही मैं आपसे कहता कृष्ण अर्जुन साथ स्वर्गीय नहीं, अर्जुन के साथ नहीं महाराज जी, तो किसने अर्जुन को सुनाया। अरे आप सब अर्जुन, आप सब में भी कंपन पैदा होता, आप सब भी घबरा जाते हो बौद्धिक संघर्ष में, निराशा आने पर क्या आपकी हालत होती है, आत्महत्या तक कर लेते, क्या जिंदगी का एक जिंदगी के रहस्य को नहीं समझ पाए, क्या समस्या के समाधान है, आप तो समस्या बनाते हैं। राम के सामने एक से एक विपरीत परिस्थिति आई लेकिन जान नहीं टिका, यार को पचाया या विचार कर, यही जिसके माध्यम से पूरे विश्व को कह रहा आज विश्व में भारत की इज्जत क्यों हो रही है। अब अंदर समझ गया है कि भारत के पास बहुत कुछ है, घबरा गए, वो घबरा के स्वीकार कर, समझ के नहीं कि मैं और कुछ करना नहीं चाहता। आज पुस्तक करता हूं, मेरा संबंध अच्छे अच्छे लोगों से बात आपसे नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बड़े आत्म गौरव से कहता हूं हमारी मिट्टी में वो बम है तो पूरे विश्व का सत्यानाश कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा निर्माण की बात किए, विध्वंस की बात रावण की, राम ने कभी नहीं किया। हम मदद किए लेकिन हम लंका विराज नहीं किए, हमारी ये संस्कृति है, लेकिन 150 वर्षों में हमारा सत्यानाश किया गया। आज कौन सी नई चीज, बड़े बड़े वैज्ञानिक तुम कौन सी नई चीज निकाल रहे जो मंत्र में शक्ति ताजी में आ गई। कई बार हमारी आपकी टेलीपैथी हो जाती है, मराठी जो आप सोचते मैं सोचता हूं। अभी 2-4 दिन पहले रास्ते में कोई बात हुई, मैं किया, मैंने कहा तुम मोबाइल से बात करते हो, मैं मन से बात करता हूं, क्या करता हूं, ये मोबाइल यंत्र है, लेकिन उससे भी एक सूक्ष्म चीज हमारे आपके पास, उसको ठीक रखो। तो आज हम करोड़ों लाखों माइल पर एक दूसरे से मोबाइल से बात यंत्र से बात कर सकते, तो नहीं, ये हमारे आपसे ही सीखा है हमने, वो यंत्र में लाए मंत्र में नहीं लाए। मैं भी तो वैज्ञानिक हूं, सोच समझ के साधु बनाया था, नहीं सुबह भांग पिया तो उठा और किसी ने लकड़ी मारा घर से निकल के साधु बना, भागा हुआ नहीं हूं, पलायनवादी नहीं हूं। इसलिए आप लोग भी कहता फिर आपको बना जी महात्मा क्यों बन गए, आप तो प्रोफेसर के फलाने चाहिए थे, क्यों नहीं रहे। तो आपको बताऊ, इतना ही बताऊ, जब मेरे मन में बौद्धिक संघर्ष जागा तो पूरा इतिहास में मेरे पिताजी कर रहे थे बहुत जबरदस्त आचरण, मैंने अपने मन की बात रखी, और जब मन की बात रखी मैं प्रभावित था, अग्निभोग से रमन महर्षि से सबसे था, उनकी कई इच्छाओं की मैंने पूर्ति की। फिर समझ के पिताजी का बेटा तो समझ के सन, तो मैं बुद्ध की तरह महावीर का समझ के संन्यास लिया, पलायनवादी नहीं, बस इतना कोई बुद्ध पलायनवादी है, महावीर पलायनवादी है, बस इतना ही कहूंगा। जब नहीं रहूंगा तो बहुत इतिहास मेरा आपको मालूम होगा, लेकिन इतिहास जब मैंने इतिहास जब मेरा इति होगा तब पढ़ूंगा, अभी नहीं, वो बताना भी ठीक नहीं, थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मैं पलायनवादी नहीं, इसलिए आपको भी पलायनवादी नहीं। सन्यासी बनना है तो पहले आयुष करो, पहले जिम्मेदारी निभाओ। तुम एक जिले की अगर कलेक्टरी नहीं निभा सकते तो क्या निभाओ, एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते तो अच्छे सन्यासी क्या बनो। डॉक्टर शिवानंद एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो दीवानदार सोसाइटी का आज विश्व के एक प्रणेता। स्वामी रामदीप हमेशा फर्स्ट क्लास आते रहे, फर्स्ट क्लास संपदे विवेकानंद, अरे जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई किया वही वही फर्स्ट क्लास डॉक्टर बना, फर्स्ट क्लास मंत्री बना, और फर्स्ट क्लास साधु बना, संत बना। जब आप छोटे तालाब में डूबे हैं तो नदी क्या पार करता, जब आप यहां नहीं उठ सकते तो हिमालय में क्या उठोगे। इसलिए आपको पलायनवादी नहीं बनाओ, पहले एक योग्य बनो, सन्यासी बनना तो समझ के आओ महात्मा। अब ये जो अर्जुन है एक बौद्धिक संघर्ष में आया, और वही आपसे जन से लेकर के जिम्मेदारी जब तक है जब तक रिटायर नहीं होते कितना बौद्धिक संघर्ष आता, नौकरी करूं कि ना करूं, ये करूं वो करूं, ट्रांसफर करूं, बहुत कुछ आता। अब वही जब नकारात्मक आएगा तो थोड़ा विज्ञान, या अच्छे अच्छे वैज्ञानिक अच्छे डॉक्टर, हम नर हैं कि नारी, पठित हैं कि अपठित, डॉक्टर हैं कि मरीज, साहित्यकार हैं कि कहानीकार या पेंटर, उसकी बात नहीं, ये हमारे आपके पिन की बात है। 2 लाख जीन्स हैं, जब आप सहज रहते हो, इससे बताऊंगा, तो हर परिस्थिति में से रास्ता निकाल लेते हैं। जब आप असहज होते हैं तो जब आप टेंशन में आते हैं तो 6 महीने के बाद एक दिन आपके नेक में बनता है। इसके बाद जब आप 6 महीने सदित जाते हैं तो 2 जीन्स आपकी नेगेटिव बनते हैं, काम नहीं करते। तब कंफ्यूजन पैदा होता, पहले टेंशन फिर कंफ्यूजन, और जब 3 जीन्स खराब होते हैं नेगेटिव तो डिप्रेशन, और जब 4 खराब होते हैं तो आत्महत्या। आपकी 1 करोड़ की गाड़ी है, 1 पहिए की हवा गई थोड़ा बहुत चले गए, 2 की गई तो भी चले गए, 4 चली गई तो सत्य बैठे रहो 1 करोड़ की। वैज्ञानिकों ने देखा ये क्यों कांप रहा है, ये जिसे विषाद बोलते हैं ये विषाद करके कंफ्यूजन है, डिप्रेशन नहीं है। ये जो कंफ्यूजन क्यों आया, बौद्धिक संघर्ष पैदा हुआ। भगवान ने समझाना शुरू किया, भगवान ने विचार दिया, प्रभु ने विचार दिया। 18 अध्याय एक विचारों का एक संग्रह। प्रथम 6 अध्याय कर्मयोग, बीच के 6 अध्याय भक्ति के, अंतिम 6 अध्याय ज्ञान। हम किसी रूप में आपके सामने आए, पहले विचार, विचार निर्णय नहीं है, विचार पर निर्णय आप होता है। अब धीरे धीरे ले चलता हूं। अच्छी बात में बौद्धिक संघर्ष पैदा हुआ, अपने जिसमें पूर्ण श्रद्धा है पूर्ण विश्वास उसके पास था। और जो कहे मानिकम शरण व्रत की बात उसकी नहीं, भगवान ने पूछा तो निर्णय कर, ये कंफ्यूजन है। तीनों बातें ठीक लग रही है, प्रभु आप सब गीता के ध्यान किए हैं, पांडव शास्त्री ने मुझे विश्व में गीता का प्रचार किया, केवल मैं मनोवैज्ञानिक ढंग से बता रहा। आपका कर्मयोग भी ठीक लगता है, भक्ति योग भी, ज्ञान योग, इसमें सब विराट योग है, अनाशक्ति योग, सांख्य योग, उसकी चर्चा यहाँ है। फिर कहता है आपका, आप जो कुछ बोल रहे हैं सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मैं निर्णय नहीं कर पाता। अरे इतना सुनाने के बाद भी तू निर्णय नहीं कर पा रहा, कह नहीं कर पा रहा, तो थोड़ी देर सहज होगा। और अंदर अंदर चक्षु से देख कि सबसे ज्यादा विश्वास तू किस में रखता है। एक नहीं तीन बार हमारे प्रभु ने पूछा, और विचार करके अर्जुन बता, तीनों बार का